तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया है? अमाल 19:3 एक अहम सवाल। बपतिस्मा मसीही चर्च कलीसिया का एक हिस्सा रहा है। जब से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावन यीशु मसीह की पहली आमद का पेशरो बनकर आया था, यूहन्ना ने दरियाए यर्दन में गुनाहों की तौबा के लिए बपतिस्मा दिया, मत्ती 3, और इसका पैगाम लोगों के दिलों को यीशु मसीह को खुदावन के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार करना था, यसाया 40:3। यीशु ने खुद यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, मत्ती 3:13-15, और वो हमारी मिसाल है। मरकज़ 16:16 में यीशु कहता है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। मसीही बपतिस्मा इन लोगों के लिए एक लाजमी अमल है जिन्होंने सच्चाई के कलाम को सुना है, जो कलवरी की सलीब पर यीशु की कुर्बानी पर यकीन रखते हैं, और जिन्होंने यकीन किया है कि खुदा ने इस कुर्बानी के ज़रिए ज़ाती तौर पर इनके गुनाह माफ़ कर दिए हैं। इसलिए इन लोगों को खुदा की तरफ से गलगत्ता के काम का ब्राह रास्त मुकाशफा होता है, जो यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। इसका मतलब है कि हमारे कर्ज़े अदा हो चुके हैं। बहुत से लोग जो आज यीशु मसीह को निजात दहिंदा और खुदा मानते हैं, इनके गिरजाघरों ने बाप बेटे और रूह कुदस 3 अनमनात के लकब से बपतिस्मा लिया है। यही लोग कहते हैं कि वो खुदा के कलाम को सच्चा तस्लीम करते हैं, लेकिन वो अमाल से इनकार करते हैं। 38:2 पत्रस ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। बहुत से मुखलिस लोग गुमराह होते हैं और बाज़ औक़ात मंदरजा ज़ैल वजूहात की बिना पर उलझन में पड़ जाते हैं। मनज़म गिरजाघरों की अहलियात ने कलाम की रूह कुद्दस के मुकाशफा की जगह ले ली है। हमें रसूलों के नज़रिए के मुताबिक बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? सदियों से ये बहुत कदीम सवाल खुद को रूहानी पेशवाओं पर मुसल्लत कर चुका है। क्या रसूलों ने जानबूझकर यीशु मसीह के हुक्म की नाफरमानी की जब उसने उन्हें दुनिया भर में जाने और इन्हें नाम वाहिद से बपतिस्मा देकर शागिर्द बनाने का हुक्म दिया था? एपोक्लिप्सिस असल यूनानी लफ्ज़ का मतलब है नकाब शाई करना, नंगा करना, इनकशाफ। हमें मत्ती 19:28 का असल वर्जन मिलता है, जैसा कि चर्च यबूसियों के वालद ने इसका जिक्र किया, मेरे नाम के अंदर एंटो अनिमोतोमो। यूनानी और लातीनी में नस्ले के नए ऐदनामे में हमें मत्ती 19:28 का असल वर्जन मिलता है, जैसा कि क्लीसिया के वालदों से बरकरार रखा है, एंटो अनिमोतोमो। इसका मतलब है मेरे नाम के अंदर। बपतिस्मा देने का ये असल तरीका यूनानी नए अहदनामे में दूसरा एडिशन 1954 लंदन बाइबल हाउस में भी पाया जाता है। बपतिस्मा देने वाले हुक्म का इजहार इस तरह किया गया है, इन्हें मेरे नाम के अंदर बपतिस्मा दो। अगर ये शुरू से ही मुशाहदा किया जाता तो हम बहुत सी गलतियों और तशरीहात से बच जाते, ताहम मत्ती 19:28 जों की तू रह सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बाप बेटा और रूह कुद्दस नाम नहीं बल्कि ओहदा या लकब है, और हम जानते हैं कि तमाम लोगों को नाम में बपतिस्मा लेना चाहिए, लफ्जी तौर पर नाम के अंदर। ये नाम ने ऐदनामे का नाम है जिसमें खुदा ने बतौर बाप आपको बेटे और रूह कुद्दस से ज़ाहिर किया है। ये नाम खुदा में यीशु मसीह है। ये सबको एक बार समझना चाहिए, मेरे नाम के अंदर। क्या उन्होंने बग़ैर किसी मजहबी बुनियाद के कोई चीज़ ईजाद की कि जब उन्होंने नए मज़हब तब्दील करने वालों को सिखाया और उन्हें अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर तौबा करने और बपतिस्मा लेने का हुक्म दिया? अगर रसूलों ने यीशु का हुक्म नहीं माना तो फिर इस हुक्म को किसने माना और कब माना? ये सब से संजीदा और अहम सवाल है जो हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए, और पैंतूस पलातूस की तरह नहीं जो कभी खुद को यीशु के बारे में एक संजीदा फ़ैसला का सामना करते हुए पाया गया। कलाम मुजस्सम हुआ और अफजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। यूहन्ना 14:1, और जिसने पानी मांगा उस तरह सोचकर इसका जुर्म दूर हो गया, वो पानी में धोकर अपनी गलती नहीं मिटा सकता था, तुम भी नहीं। लेकिन गुनाह से पाक होने के लिए हम में से हर एक को खुदा के कलाम की अतायत करनी चाहिए, जैसा कि यह खुद पेश करता है। आइए हम एहतियात से जवाब तलाश करें। बाप कोई नाम नहीं, बेटा कोई नाम नहीं, और रूह कुदस कोई नाम नहीं है। क्या आपके बैंक अकाउंट पर लफ्ज़ बाप या बेटा या दादा के साथ चेक पर दस्तखत करना अजीब नहीं होगा? आप जानते हैं कि इस चेक की कोई कीमत नहीं होगी, फिर बाप बेटे और रूह कुदस के लकबों से बपतिस्मा क्यों लिया जाए? यह हमारे खुदावंद यीशु मसीह थे जिन्होंने पतरस के मुंह से अपने अमाल 2:14-36 में ज़िंदा होने के बाद बात की, और बोले गए अल्फाज इन लोगों के लिए एक मजबूत यकीन लाए जो सुन रहे थे और जिन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ाया था कि चीखे थे, मजबूरी, निदामत और पछतावे से पूछा, ऐ भाइयों हम क्या करें? इसके बाद खुदावंद यीशु ने दोबारा पतरस के मुंह से इनको जवाब दिया, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। अमाल 38:2। बाप और बेटे और रूह कुदस का नाम है खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, छिड़कने से नहीं बल्कि डुबोने, जैसा कि यीशु ने लिया था, और एक ऐसे शख्स की तरफ से जो खुद रूह कुदस से भरा हुआ था, जिसके पास मुकाशफा था। अगर आप बाप बेटे और रूह कुदस के लकब से बपतिस्मा लेते हैं तो आपको दोबारा खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना चाहिए। हर एक को अमाल 38:2 के मुताबिक बपतिस्मा लेना चाहिए। खुदा की तरफ से रूह कुदस का तोहफा हासिल करने का यह वाहिद रास्ता है। कुलसियों 17:3 कहता है कि और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो, और इसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। बपतिस्मा दरअसल इकरार और अमल का लफ्ज़ है। ये इफिसियों 4:5-6 आयत में भी लिखा है कि सिर्फ एक ईमान, एक बपतिस्मा है, यीशु मसीह के नाम पर देना बिल्कुल सही है। हम 9 मतन पढ़ने जा रहे हैं जहां बपतिस्मे के बारे में बात की गई है, और हम दिखाएंगे कि दीगर तमाम बपतिस्मे दुरुस्त नहीं हैं। अमाल 38:2, पेंटिकोस्ट में यहूदी। अमाल 8:12-16, मखलूत नस्ल के लोग सामरी। अमाल 14:9, साउल अपने मजहबी फ्रेम में इन सबको जेल भेज दिया गया जिन्होंने खुदावंद खुदा का नाम लिया। अमाल 9:5, यीशु ने आसमान से बात की और साउल को बताया कि वो खुदावंद है। अमाल 16:22, पालूस ने बपतिस्मा लेकर खुदावंद का नाम लिया। अमाल 48:10, कर्नीलियस के घर के अफराद, पतरस ने उन्हें हुक्म दिया कि वो खुदावंद के नाम पर बपतिस्मा लें। खुदावंद का नाम यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है। अमाल 19:5, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ये 12 शागिर्द जिन्हें पालूस ने इफिसस में पाया, कभी भी मसीह के साथ इसकी मौत, इसकी तदफीन और इसके जी उठने में शिनाख्त नहीं हुए। यही वजह है इन्हें खुदावंद यीशु के नाम पर दोबारा बपतिस्मा दिया गया। रोमियो 6:3-5, रसूलों ने ऐलान किया कि वो यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले चुके हैं। ज़मीर हम का इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह ने बपतिस्मा ले चुके हैं और हम यीशु की मौत में बपतिस्मा ले चुके हैं। रोम के मुकद्दस भाइयों और बहनों को पालूस रसूल ने खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया, जो मर गया था, दफन किया गया और मुर्दों में से जी उठा। करिन्थियों के पहले ख़त में 1:12-13, करिन्थस चर्च कलीसिया, चर्च अवाम है, इंटों की इमारत नहीं, से 3 सवाल पूछे गए। क्या मसीह बट गया? क्या पालूस को आपके लिए मसलूब किया गया था? क्या आपने पालूस के नाम पर बपतिस्मा लिया था? जिसका वाजा मतलब ये है कि इन्हें एक नाम से बपतिस्मा दिया गया था। पालूस के नाम पर बपतिस्मा लेना बेमानी होगा, क्योंकि वो नहीं था जो मर गया और हमारे लिए दोबारा ज़िंदा हुआ, बपतिस्मा आपकी शनाख्त किसी ऐसे शख्स से कराता है जो मर गया, दफन किया गया और दोबारा मुर्दों में से जी उठा। गलतियों 27:3, गलतियों की कलीसिया ने हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। कुलसियों 2:11-14, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, यानी मसीह जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है और इसी के साथ बपतिस्मा में दफन हुए और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया उसके साथ जी उठे और उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म के नामखतूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ ज़िंदा किया और हमारे सब कसूर माफ़ किए और हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी और इसी को स्लीब पर किलों से चढ़कर सामने से हटा दिया। यही वजह है कि पालूस ने गलतियों से कहा कि जिसमें खतना का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता, क्योंकि अब मसीह में बपतिस्मा ने जिस्मानी खतना की जगह ले ली है। इस तरह पालूस ने कलीसियाओं के चर्च के सामने जोर देकर कहा कि मसीह में बपतिस्मा जो इसके साथ तदफीन की नुमाइंदगी करता है इनके साथ नहीं, गुनाह की पुरानी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर हटा देता है। याद रखें कि पुराने अहदनामा के तहत खतना भी हटाना था, चमड़ी को तेज़ पत्थर से काट कर हटा दिया गया था। खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा नए अहद नामे में एक हुक्म है, जिस खतना जैसे खतना पुराने अहदनामे में एक हुक्म था। कुछ सोच सकते हैं कि इसका ताल्लुक रूल कुद्दस के बपतिस्मा से है, लेकिन ये रूहानी बपतिस्मा होने से बहुत दूर है। मुकद्दस सहीफ़ों में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि रूह का बपतिस्मा आपको मसीह के साथ शनाख्त कराता है। रूह मर नहीं गई, दफन नहीं हुई और दोबारा ज़िंदा नहीं हुई, लेकिन पालूस ने करंथियों 15:4 से तस्दीक की कि ये मसीह था जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मुकद्दस सहीफ़ों के तमाम हवालात जो हमने आपको पाने के बपतिस्मे के बारे में दिए हैं मौत के पानियों में दफन होने की बात करते हैं। यह आपकी मौत है, आपकी तदफीन है और आपके साथ इसका जी उठना है। बपतिस्मा का पानी का बपतिस्मा बिल्कुल रूहानी बपतिस्मा नहीं है। पानी का बपतिस्मा सिर्फ एक शख्स दे सकता है जिसने खुद यीशु मसीह का नज़ूल हासिल किया। ये वाहिद मसीही बपतिस्मा है, सिर्फ वही जो आपको मसीह की तकमील के लिए मतहद कर सकता है इसकी मौत, इसकी तदफीन और इसके जी उठने में। अब तसलीसी फार्मूले पर नज़र डालते हैं। तसलीस पसंद लोग मानते हैं कि बाप एक शख्स है, बेटा दूसरा शख्स है और रूह कुद्दस तीसरा शख्स है। वो तसव्वुर करते हैं कि अलूहियत में तीन अशख़ास हैं। अगर आप यकीन रखते हैं तो आपको सिर्फ बेटा यीशु मसीह होने के साथ से पहचाना जा सकता है, क्योंकि याद रखें कि बपतिस्मा क्या है, इसकी नुमाइंदगी क्या है। मौत, तदफीन, जी उठना, बाप का इंतकाल कब हुआ, इसे कब दफन किया गया, वो मुर्दों में से कब ज़िंदा हुआ, रूह कुद्दस कब फौत हुआ, कब दफन किया गया, ये मुर्दों में से कब ज़िंदा हुआ और मुखलिस दिल जो इलाही सच्चाई की तलाश में है क्या तुम समझते हो। बाप और बेटे रूह कुद्दस से अलग होने वाले दो अलग अलग अशख़ास नहीं हो सकते। किताबी बपतिस्मा आपको इसकी शिनाख्त करता है जो तन्हा मर गया, दफन किया गया और दोबारा ज़िंदा किया गया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा गुनाहों की माफ़ी के लिए आपको सिर्फ यीशु मसीह से जोड़ेगा, ना कि बाप से और ना ही रूह कुद्दस से, अगर वो दो अलग अलग अशख़ास थे। पानी में बपतिस्मा लेने और बाप और रूह कुद्दस से अपने आप को पहचानने का कोई इम्कान नहीं। अगर वो बेटे से अलग दो रूहानी शख्स होते, जाहिर है कि वो तीन अलग अलग शख्स नहीं हैं। अगर रसूलों को मत्ती 19:28 मुकाशफा ना मिलता और अगर यह हुक्म अमाल 38:2 खुदा में यीशु मसीह का नाम था मैं पूरा ना होता, तो हमारे रसूल भी खौफनाक गलतियों से पहले कहते मसीह झूठ बोलता है। इसने कहा, इसने अपने शागिर्दों की जहानत जहन खोल दी। ताकि वो मुकद्दस हीफ़े को समझ सकें जिसकी इब्तदा मूसा की शरीयत अंबिया और ज़बूर से होती है। लूका 24:44-45। रसूल पालूस अपना वक्त ज़ाया करता जब वो इफ़्सियों के रोशन ख्याल होने की दुआ करता। इफ़्सियों 18:1। वो तमाम वक्त जो मसीह ने अपने शागिर्दों को पढ़ाने की कोशिश के लिए वक्फ किया था 3.5 साल तक ज़ाया हो जाता। इसकी मौत, तदफीन और क़्यामत इन शागिर्दों के लिए कोई फ़ायदा नहीं रखती जिन्होंने इसकी मौत के बाद इसके काम को जारी रखने की कोशिश की। वो तमाम हदायात जो इसने इनको अपनी क़्यामत के बाद 40 दिन तक दी थी वो बेकार और बेमानी होती। रूल कुद्दस का भाव जिसकी वो यरूशलेम में तवक्का करते रहे थे कोई फ़ायदा नहीं होता और वो इन्हें गुमराही की तरफ ले जाता। मसीह के गुमशुदा लोगों को छुड़ाने के मंसूबे में वो इन लोगों को मंतखब कर सका जो इसकी हदायत को समझने के काबिल थे जब उन्होंने खुद इन्हें 3.5 साल सिखाया। क्या पतरस 3,000 मुखलिस यहूदियों को गुमराह करता और यरूशलेम में एक गलत अकीदा फैलाता है? यीशु एक गैर मुतवाजन आदमी होता क्योंकि इसने बादशाही की चाबियां पतरस जैसे बेवकूफ़ को दी होती जो अपने पहले पैगाम के बाद से गलती कर लेता। ये सोच करके वह चाबियां सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। मत्ती 19:16 जब इसने खोला यहूदियों के लिए फजल का दरवाज़ा और कर्नीलियस के घर में कौमों के लिए, जन्नत खुद ही उलझन में पड़ जाती क्योंकि एक फरिश्ता कर्नीलियस के पास आया और इसे पतरस को लाने के लिए कहा जो इसे और इसके ख़ानदान को बचाने के लिए चीज़ें बताता है। अमाल 14:11 में खुदा बाप अपना दिमाग खो देता क्योंकि इसने यीशु मसीह जैसे नाअहल शख्स को ज़मीन पर इतने अहम मिशन के साथ भेजा, क्योंकि यीशु इस मिशन को सिर्फ 12 जाहिलों तक पहुंचा सकता था जो लोगों को एक भी पैगाम नहीं दे सकता था। जब खुदा ने तमाम अकवाम से यहूदियों को वही पैगाम सुनने के लिए भेजा था, अमाल 2:5, पतरस लम्हा ब लम्हा ये यकीन करने के लिए पागल हो गया होगा कि तौबा, बपतिस्मा और रूह कुद्दस के हसूल का पैगाम अमाल 38:2 यहूदियों और कौमों के लिए था। जितना खुदावंद हमारा खुदा कह सकता है, खुदावंद कादर मुतलिक खुदा रोमी शहनशाह कॉन्स्टेंटीन रोमन कैथलिक कलीसिया और इसके त्वाइफ बेटियों प्रोटेस्टेंट गिरजाघरों का कितना शुक्रगुजार होगा जिसने रसूलों के नज़रिए के ख़िलाफ़ सख्त जद्दोजहद की, इसे मंसूख कर दिया और इस पर पाबंदी लगाने और बिदत के दर्जे में डालने की वजह से कोलियर के नए इंसाइक्लोपीडिया जिल्द 10:3 के मुताबिक लफ्ज़ तसलीस जो कि एक बार मुकद्दस सहीफ़ों में नहीं पाया जाता पहली दफ़ा मसीह के बाद दूसरी सदी में एक मखसूस थियोफिलस ने अंताकिया में इस्तेमाल किया। तसलीस का नज़रिया बाप बेटे और रूह कुद्दस के अलकाब में बपतिस्मा का नज़रिया सिर्फ 325 में कौंसल ऑफ नसिया के दौरान रोमन कैथलिक चर्च क्रिसिया का एक नज़रिया बन गया। पहले मजहबी फ़िरके या मनज़म मज़हब जिसे आम तौर पर क्रिसिया चर्च कहा जाता है ने कबूल किया और फिर दूसरे तमाम गिरजाघरों ने जो इसके बाद खुद को मनज़म करते हैं। हम आपको तजवीज़ देते हैं कि लाइब्रेरी में कौंसिल ऑफ नसिया से मुतल्लिक तारीख की किताबों और वहाँ किए गए फ़ैसलों से मशवरा करके इनके हकायक का पता लगाएं। हकीकी असम्बली चर्च क्रिसिया यीशु मसीह का मुजस्सम है, यह मुकाशवा की चट्टान पर बनाया गया है। खुदावंद यीशु मसीह कौन है? मत्ती 16:16-18 ताहम इंसानी तशरीहात और दलाइल के ज़रिए तसलीस का अकीदा और अलकाब में बपतिस्मा देने को खुदावंद यीशु के मुकाशवा से बदल दिया गया था और यह फ़िरका वाराना निज़ाम मनज़म मज़हब की इब्तदा में था जैसा कि आज मौजूद है। यूहन्ना के पहले ख़त में लिखा है और ये भी जानते हैं कि खुदा का बेटा आ गया और उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी हैं जाने और हम इसमें जो हकीकी हैं यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। हकीकी खुदा और हमेशा की ज़िंदगी यही है। बाइबल वाज़े तौर पर कहती है کہ خدا نے اپنے آپ کو جسم میں ظاہر کیا ہے اور ہمارے درمیان رہا ہے، اور یسوع نے اپنے بیٹے کی حیثیت سے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تم مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ کاش وہ یسوع کو جانتے، کیا وہ اسے صرف ایک انسان کے طور پر جانتے تھے؟ کیونکہ اس وقت ان کے پاس گوشت اور خون میں ظاہر ہونے والے خدا کی روح کا نزول نہیں تھا، جیسا کہ یسوع نے کہا، اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا۔ اور نہ صرف باپ کو جانتے تھے بلکہ آپ نے باپ کو بھی دیکھا ہوتا۔ چرچ آف کرائسٹ خدا کے روح کے اس مکاشفہ پر بنایا گیا ہے جو بیٹے کے گوشت اور خون کے جسم میں آیا۔ ہر پیدا ہونے والے بیٹے اور بیٹی کے پاس یہ مکاشفہ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ خداوند یسوع کے ساتھ جب وہ آئے گا، اسی سچائی کی تصدیق انجیل یوحنا 14:16-20 میں ہوئی ہے، جب یسوع نے ایک مددگار تسلی دینے والے کی بات کی تھی جو ان کے لیے اور ان میں خدا کا ظہور ہونا تھا۔ اس مددگار کا مقام ہمارے درمیان میں روح القدس کی شکل میں ہوا۔ اس کے بعد بیٹے کے گوشت اور خون کے جسم کو ہمیں بچانے کے لیے کلوری پر مصلوب کیا گیا۔ اسی وقت مددگار تسلی دینے والا بھی آیا تھا، لیکن یسوع نے کہا، وہ اسے جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع روح القدس تھا، یعنی کہ مددگار تسلی دینے والا، گوشت اور خون میں نازل ہوا۔ کلوری کی قربانی کے بعد یسوع کے پاس آتے اور روح القدس کی صفت کے تحت ان میں ہوتے۔ بپتسمہ کا مطلب ہے پانی میں ڈوب جانا۔ بپتسمہ ہر ایک کی رائے پر نہیں چھوڑا جاتا، بلکہ یہ ہر ایماندار کے لیے عطایت کا بالکل ضروری عمل ہے۔ وہ شخص جس نے ایمان میں اپنے لیے چھٹکارا کا کام پورا قبول کیا، اور جس نے اس حقیقت کا تجربہ کیا کہ صرف یسوع نے ہمیں شریعت کے کاموں کے بغیر راست باز بنایا، وہ یسوع کے شاگرد بن جاتا ہے۔ بپتسمہ بذات خود اس مقصد کے ساتھ نہیں دیا جاتا کہ گناہوں کو معاف کیا جائے، یہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہوں نے پہلے ہی معافی حاصل کر لی ہے ایمان سے۔ پہلا پترس 21:3 کے مطابق بپتسمہ خدا سے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے ذریعے اچھے اخلاق اور ذہن کی حالت کا مطالبہ ہے۔ بپتسمہ لینے والا شخص اپنے آپ کو مسیح کے لیے مسیح سے تعلق رکھنے کا اعلان کرتا ہے، جس کے ساتھ اسے مصلوب کیا گیا تھا اور جس کے ساتھ وہ مر گیا تھا۔ دونوں افراد، وہ جو بپتسمہ لینا چاہتا ہے پانی میں ڈوبا ہوا، اور وہ بھائی جو بپتسمہ دے گا پانی میں داخل ہوگا، مجموعی طور پر کولے تک اصل بپتسمہ سے پہلے جو بپتسمہ دیتا ہے نجات دہندہ کا نام پکارتا ہے، اور مثال کے طور پر یہ لفظ کہتا ہے، بھائی یا بہن، آپ کے ایمان کی وجہ سے یا آپ کے ایمان کی بنیاد پر میں آپ کے ایمان کے مطابق بپتسمہ دیتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام پر خدا کے کلام، جس طرح یہ ایک تدفین کے دوران کیا جاتا ہے، بپتسمہ لینے والا شخص پانی کے نیچے مکمل طور پر پیچھے کی طرف پیٹ اور پیٹ پر نہیں ڈوب جاتا ہے، پھر سیدھا پانی سے باہر نکلتا ہے۔ بپتسمہ لینے والے شخص کا قبر سے باہر نکلنا پانی کا اس حقیقت کی علامت ہے کہ متعلقہ شخص مسیح کے ساتھ ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ گیا ہے۔ برٹش انسائیکلوپیڈیا جلد 3 صفحات 365 اور 366 خدا تین شخصیات پر مشتمل ہے۔ تثلیث کا فارمولہ شروع میں یکساں طور پر ہر جگہ استعمال نہیں ہوا تھا۔ تیسری صدر تک خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ اس قدر وسیع پیمانے پر لیا گیا تھا کہ پوپ اسٹیفن نے سینٹ سیپریان کے مخالفت میں اسے درست قرار دیا، لیکن کیتھولک مشنریوں نے بپتسمہ کے دوران تثلیث کا ایک یا زیادہ اشخاص کو چھوڑ کر بھول کر خود کو کیتھولک چرچ کلیسیا سے خارج پایا۔ فی الحال روم کا فارمولہ ہے، میں آپ کو باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ انفارمیشن آفس واشنگٹن ڈی سی مدرجہ ذیل معلومات بطور ثبوت فراہم کی گئی ہیں کہ چرچ کی تاریخ اور صحیفے یہ ثابت کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے نام پر پانی میں بپتسمہ یسوع مسیح کے 300 سال بعد لیا گیا تھا، اور یہ کیتھولک رومن چرچ کلیسیا نے اسے بعد میں تبدیل کیا۔ सब्सक्राइबर बाइबल डिक्शनरी जिल्द एक सफ़ा नंबर 241 असल फार्मूला यीशु मसीह के नाम पर था। तसलीस में बपतिस्मा बाद की तरक्की थी। किनी इंसाइक्लोपीडिया सफ़ा 53 दाई चर्च में तमाम बपतिस्मे हमेशा खुदावंद यीशु के नाम पर दिए जाते थे, यहाँ तक कि तसलीस का नज़रिया ये तैयार किया गया। इसके बाद लोगों ने बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मे लिए। नया बीन अलकवामी इंसाइक्लोपीडिया जिल्द 22 सफ़ा 476 तसलीस का नज़रिया। कैथलिक चर्च इस पर यकीन रखता है, हम तसलीस में एक खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन एक शख्स जो बाप है, दूसरा शख्स जो बेटा है और तीसरा शख्स जो रूह कुदस है। जलाल बराबर है, अजमत मुश्तरका है। यह नज़रिया सहीफ़ों में नहीं मिलता। जदीद इलाहियात पुराने अहदनामे में इसे तलाश करने की कोशिश नहीं करता। इस्लाह के वक्त प्रोटेस्टेंट चर्च ने तसलीस का नज़रिया संजीदगी से जांचे बगैर अपनाया। वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया जिल्द 16 सफ़ा नंबर 72-73 में एक थ्योरी का मुम्मा समझा जाता है जिसकी कोई मुनासिब वजाहत नहीं है। बाप बेटे और रूह कुदस पर ईमान का पहला मुस्तनद बयान 325 में नसिया में गिरजाघरों की पहली कौंसिल ने बनाया था, जिसमें यह भी ऐलान किया गया था कि बेटा बाप के बराबर है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा से मुतलिक रसूलों के नज़रिए को रद्द करते हैं, जो आपको सच्चाई के मुकाशवा की तरफ ले जाएगा, ये जानते हुए कि यीशु ने खुद इन सब के लिए दुआ की जो रसूलों के कलाम के ज़रिए ईमान लाएंगे, यूहन्ना 17:20, अगर आप 3 अलग अलग अशखास में तसलीसी बपतिस्मा कबूल करते रहेंगे तो आप खुद ब खुद रोमन कैथलिक चर्च कलीसिया में पहुँचाए जाएंगे, क्योंकि ये रोमन कैथलिक चर्च कलीसिया का बपतिस्मा है जो आपको मिलेगा। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से दुआ करें कि वो आपको अपने फजल और उसके रूह से रहनुमाई करे। खुदा इन लोगों के साथ है जो आजिज़ दिल रखते हैं, इसके बेटे और बेटियां जो बाइबल की 66 किताबों पर यकीन रखते हैं जो इसके रूह से नाजिल हुई हैं। आमीन।